ओमज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं साक्षात् येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतेतुनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रातःकालीन कक्षा में। और क्योंकि रविवार का दिन है, कई भक्त ऐसे भी होंगे जो नियमित रूप से कक्षा में नहीं आ पाते होंगे वीकडेज पे, आज वीकेंड पे आप आए हैं। आप सभी का स्वागत है। और इस आसन के बोलने युक्त बैठ के बोलने युक्त तो नहीं हूं, पर वैष्णव की आज्ञा से आज कुछ हम भगवत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद की याचना करते हैं, सारे भक्तों से, वैष्णव से, विशेषकर यहाँ पे वरिष्ठ भक्त हैं कई सारे, इस गृह राम राघव प्रभु, इस गृह श्याम कृष्ण प्रभु जी, कृष्णदीप प्रभु जी, अन्य सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की विनती करते हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसपे हम डिस्कशन करेंगे। क्या है उत्सव आज? क्या वैलेंटाइंस डे? मुझे कुछ वैलेंटाइंस डे सुनने पड़ा। कौन सा है? अच्छा, मैं कल आ रहा था ट्रेन से तो किस पता चला कि आज वैलेंटाइंस, भूल गया था थोड़ा। तो वैलेंटाइंस डे तो मैंने सोचा, तभी मैसेज भी मेरे को आया कि आज क्लास है, तो मैं सोचता रहा किस पे लूं, वैलेंटाइंस डे पे अद्वैत आचार्य। तो सीरियसली हम शुरू करते हैं आज पहले वैलेंटाइंस डे से, और फिर हम अद्वैत आचार्य के बारे में बात करेंगे, श्री अद्वैत आचार्य। सो आप भी सोच रहे होंगे भगवत कक्षा में वैलेंटाइंस डे क्यों चर्चा करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो आप कैलेंडर में देखेंगे, क्रिश्चियन कैलेंडर में प्रॉपरली, तो आज तो आजकल तो हर चीज वगैरह में आपको कैलेंडर मिलेगा तो उसमें वैलेंटाइंस डे खाली छपा होगा। बल्कि पुराने क्रिश्चियन कैलेंडर से आप उसमें जाएंगे तो लिखा होगा सेंट वैलेंटाइंस डे, संत वैलेंटाइन दिवस। कितने लोगों ने देखा है सेंट वैलेंटाइंस डे? कम ही लोगों ने देखा होगा। कोई अगर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़ेंगे तो वहां पर दिखा रहा सेंट वैलेंटाइंस डे। तो आज हम तो देखते हैं वैलेंटाइंस डे पे कोई सेंटली एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये कौन है सेंट वैलेंटाइन? देखिए, इस जगत को बताया गया ऊर्ध मूला अधा शाखा, जो आध्यात्मिक जगत है उसकी विकृत छाया, जो सबसे ऊंचा है वो सबसे नीचा हो गया यहां पे। तो हर आध्यात्मिक चीज को उल्टा करके भौतिक शेप कैसे देना है, बस जीव इस चीज में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्टीज है कि जहां पे प्रेम है उसको काम में बदल दे, जहां पे आनंद है उसको भोग में बदल दे, इस प्रकार से वो इस चीज में एक्सपर्टीज है। तो सेंट वैलेंटाइन एक बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। ये लगभग ये तीसरी शताब्दी में, मतलब कह सकते हैं जीसस क्राइस्ट के अंतर्धान होने के करीब 250 वर्ष पश्चात ये रहे, और इन्होंने भी कृष्ण धर्म का, क्राइस्ट का जो धर्म था, जैसे प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ने हमें बताया कि क्राइस्ट भी बहुत भगवान के शक्ति के शब्द आ रहे हैं, और ऐसा अगर ऐसा नहीं तो कैसे संभव है उन्होंने दूसरों के भले के लिए इतनी पीड़ा सही। और वो एक वैष्णव है, निश्चित रूप से भगवान नाम का प्रचार किया, भगवान के शेल्टर का प्रचार किया। तो ऐसे उनके लगभग 250 वर्ष पश्चात उन्होंने एक वैलेंटाइन नाम के व्यक्ति हुए, और इन्होंने भी भगवान की सेवा करने का, अन्य सभी जीवों की सेवा करने का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और जो जो मार्ग क्राइस्ट ने बताया था। अगर आप हिस्ट्री से, इतिहास से अवगत हो तो ये समय वो है मॉडर्न हिस्ट्री में जब क्रिश्चियनिटी पे हैवी रिस्ट्रिक्शंस थे, कड़ी पाबंदी थी, ना कोई क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म का पालन कर सकता है, ना कोई इसका प्रचार प्रसार कर सकता है, रोमन किंग्स थे, और हल्का सा भी कोई क्रिश्चियनिटी के पालन करते हुए या उसका प्रचार करते हुए पाया गया तो उसको मृत्यु भी हो सकती है, बहुत यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। इन सब के बावजूद सेंट वैलेंटाइन ने भगवत प्रचार उन्होंने जारी रखा, और उसके लिए उन्हें खूब यातनाएं, खूब समस्याएं झेलनी पड़ी। जैसे क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, इनको भी शहीद होना पड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सेंट वैलेंटाइन ने, संत वैलेंटाइन ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो आज के दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वो सेलिब्रेट तो सेलिब्रेशन से कहीं कोसों दूर उसका रिलेशन है। कैसे वैलेंटाइन विकृत हुआ, लोग देखते हैं। ये अभी वसंत पंचमी हमने बनाया कि कल ही मनाया ना, तो वसंत ऋतु आ रही है। ये वो ऋतु है, ये वो सीजन है जब पक्षियां, जब पक्षी है ये आपस में मेट करते हैं, नर पक्षी, मादा पक्षी या पशु, इस प्रकार से आपस में संभोग करते हैं। मनुष्य नहीं, पक्षियों का सीजन होता है इस सीजन में संभोग करने का। तो जो कामी पुरुष है उन्होंने देखा, रे यहां पे तो इस संभोग का कोई भी बहाना मिल जाए उनको संभोग करने के लिए, पशु पक्षी कर रहे हैं तो चलो ठीक है, हमें अल्टीमेटली पशु पक्षी बनना, तो अभी इसी जीवन से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो उसी को कॉपी करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बना लिया कि हाँ, इसी महीने में, इसी वसंत ऋतु के समय में, फरवरी के महीने में जब पशु पक्षी आपस में संभोग करते हैं तो हम भी संभोग करेंगे, जैसे हम आगे चल के पशु पक्षी बन सकें। और उनको डेट सूझ नहीं रहा था किस दिन बनाया जाए, तो उन्होंने देखा वैलेंटाइन डे को पकड़ लिया, सेंट वैलेंटाइन्स को उन्होंने अपने बलि का बकरा बना लिया, क्योंकि वैलेंटाइन्स डे जो मनाया जाता था एक फेस्टिवल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, क्योंकि सेंट वैलेंटाइन ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया सभी जीवों के लिए, इनफैक्ट पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए भी वो एक कोमल हृदय रखते थे और सभी की सेवा करने पे विचार करते थे। तो ये उनका भाव था, इसी वजह से इसी चीज को मानते हुए सेंट वैलेंटाइन डे मनाया जाता था। ये एक दिवस था, प्रेम का दिवस, सैक्रिफाइस का दिवस, त्याग का दिवस। तो उन्होंने क्या किया, ये प्रेम का दिवस है तो उसको काम का दिवस बना दिया, कहते हैं उसको प्रेम पर होता क्या है, काम। कविराज गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण रिंदी अपीति इच्छा तारे, अपने रिंदी अपीति वंशा, अपने अपीति इच्छा तारे बोले काम, कृष्ण रिंदी अपीति वंशा धरे प्रेम नाम। कि अगर अपनी इंद्रियों की प्रीति की डिजायर करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्रभुपाद ने बहुत सटीक इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन दिया, अनुवाद दिया, जो अपनी इंद्रियों की इच्छा करते हैं तो उसको बोलते हैं काम। और जब कृष्ण की, भगवान की इंद्रियों को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है या वैसी इच्छा करता है, इसको बोलते हैं प्रेम। तो सेंट वैलेंटाइन के व्यवहार में जो था वो काम था या प्रेम था, प्रेम। और आज के समय में लोग तथाकथित प्रेम के नाम पे कर रहे हैं, वो अपनी इंद्रिय के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की इंद्रिय के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो गया, काम। तो ये कहीं से भी लव का फेस्टिवल नहीं है, ये काम का फेस्टिवल है। और इस प्रकार से लोग अपनी अपने लोअर डिजायर्स को, अपनी ऐसी इच्छाओं को भगवान के एक संत के फेस्टिवल के से रिलेट करके सेलिब्रेट करते हैं, जो कितना उचित नहीं है। एनी हाउ, मैं सबसे बताया कि सब लोगों को एटलीस्ट सेंट वैलेंटाइन के बारे में पता चले। आज का दिन वैष्णव देख सकते हैं एक दिन जिस दिन वो त्याग का, एक प्रेम का, एक शांति के संदेश के रूप में देखा जा सकता है। वैष्णव उस रूप से देख सकते हैं, और जो अन्य भौतिकवादी व्यक्ति हैं इसको काम के रूप में, पशु पक्षी को फॉलो करने के रूप में, उस रूप में से उसको सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन संयोग से, वैसे हर साल तो ऐसा नहीं होता, आज ही के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस या प्राकट्य दिवस। अद्वैत आचार्य पंच तत्व में से एक प्रमुख पर्सनालिटी है। हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं, और फिर अद्वैत आचार्य का नाम लेते हैं। अद्वैत आचार्य पंच तत्व में एक प्रकार से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे हैं, तीसरे ये पर्सनालिटी है जिनका हम इन्वोक करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रिडिक्शन किया गया, उनके बारे में बताया गया, घोषणा की गई, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग उपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेदशा। भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्ण अकृष्ण, मतलब कृष्ण का मतलब काला, काला का उल्टा गोरा, गोरे रंग में आएंगे, गौर वर्ण में, अपने साथ में अपने अंग और उपांग के साथ में आएंगे और संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करेंगे, और उनको बुद्धिमान व्यक्ति जैसे आप सभी सुमेदशा ऐसे व्यक्ति ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्शिप करेंगे, उनका पूजा अर्चना करेंगे। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं अद्वैत आचार्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग हैं। नित्यानंद प्रभु भी अंग हैं और अद्वैत आचार्य भी अंग हैं, बाकी उपंग आते हैं और अन्य पार्षद आते हैं, पर अद्वैत आचार्य ना कोई अंश है ना उपअंग है, वो एक मुख्य अंग है भगवान के, इतने नजदीकी और इतने निकट गौर लीला में। अद्वैत आचार्य भगवान की लीला में शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने सहयोग दिया, भगवान के आने का कारण बने और भगवान के अप्रकट होने का भी कारण वही है अद्वैत आचार्य। जैसा हमने ये भी सुना है आप में से ज्यादातर भक्तों ने, श्री कृष्ण यहां पे धराधाम पे 5000 साल पूर्व आए, 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने अन्य लीला अलग अनेक अनेक लीलाएं की, फिर वही श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेके लगभग 500 वर्ष पूर्ण फिर से धराधाम पे प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जब श्री कृष्ण आते हैं अकेले नहीं आते, उनके साथ में उनके अनेक पार्षद गण भी आते हैं, अनेक देवता भी आते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सहयोग देने के लिए। तो जब श्री कृष्ण आए महाप्रभु के रूप में तो उनके निकट में बलदेव जी हैं, वो कैसे है, वो क्या बन के आए, बलराम हईल निताई, वो नित्यानंद प्रभु बन के आए। और श्रीमती राधा रानी किस रूप में आई, गदाधर पंडित के रूप में। तो ये अद्वैत आचार्य कौन है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है। कई बार जब ये चीज सुनते हैं, स्पेशली अगर कोई भक्ति में इंट्रोड्यूस हो रहा है, बोला महाविष्णु कृष्ण लीला में अद्वैत आचार्य दाढ़ी रख के इस रूप में कैसे है, ये बात हो सकता है हृदय में कुछ एक्सेप्ट करने में इसको कभी कभी लोगों को दिक्कत आती है, और क्यों अद्वैत आचार्य इस प्रकार से आके कृष्ण का नाम कीर्तन करेंगे, कृष्ण को बुलाने का कारण बनेंगे, ऐसा क्या चीज है, क्यों ऐसा करेंगे। अगर ऐसा, इस चीज को समझने के लिए हम द्वापर युग की एक लीला के बारे में चर्चा करते हैं। ये मेनली यही चीज हमें अद्वैत आचार्य को समझने में हेल्प करेगा। श्री राधा राधिकरम कृष्ण बलराम की जय। तो दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम का है, जो उसमें जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, टोटल 90 अध्याय है और 89 जो नंबर का जो चैप्टर है, अध्याय है, उसमें दो रोचक कथाएं आती हैं। एक कथा आती है कैसे भृगुमुनि को सारे सेजेस बोलते हैं, भृगुमुनि जाते हैं टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है, उनको पता चलता है कि विष्णु श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा से और शिव से। फिर उसी अध्याय में जो सेकंड हाफ में जो कथा आती है वो बहुत ही रोचक कथा है। इस कथा में क्या होता है कि द्वारका का दृश्य है। द्वारका में साधारण रूप से तो पूरा शांति है क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण वहां पर विद्यमान है, यदुवंशी है उनके निजी पार्षद, महाराज उग्रसेन राजा है, पूर्ण रूप से अच्छा शासन बना हुआ है, सारे समाज के सारे वर्ग सारे श्रेणी के लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, परस्पर सहयोग में है और भगवत चर्चा कर रहे हैं। परंतु एक विशेष समस्या आती है वहां पे एक व्यक्ति के पास में, और ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये व्यक्ति द्वारका का एक ब्राह्मण था जिसके पास समस्या आई। हम सुनते हैं कृष्ण के बारे में, गो ब्राह्मण हिताय चाह, कृष्ण ब्राह्मण के हित चाहते हैं, हित करते हैं। तो उनके देश में उनके जगह में सभी को सुख होना सुखी होना चाहिए, ब्राह्मण को तो निश्चित रूप से सुखी होना चाहिए, पर वहां के ब्राह्मण के साथ में एक समस्या आई। क्या समस्या थी? उसके पुत्र का जैसे ही जन्म हुआ वो पुत्र मर गया, वो पुत्र मर गया। और ये ब्राह्मण ने देखा मेरे पुत्र मर गया, मैंने सही प्रकार से गर्भदान संस्कार किया, मैंने सही प्रकार से वेद पाठ अध्ययन करके मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं धर्म के अकॉर्डिंग, मेरा पुत्र मर गया, ऐसा कैसे? वो जाके उसने राजा के पास पहुंच गया। कौन है राजा? महाराज उग्रसेन। उनके दरबार में पहुंचा और राजा को उल्टा सीधा कहने लगे, आपके होते हुए मेरे पुत्र की मृत्यु ऐसा कैसे हो रहा है? जरूर यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए ऐसा होता है, ये प्रभाव होता है राज अधिकारी का। जो भी राज जो भी शासक होते हैं वो कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे शासन कर रहे हैं, उसे एक एक चीज निर्धारित होती है। शहर में वर्षा हो रही है नहीं हो रही है, लोगों के घर पे शांति है प्रॉब्लम है, ये सारी चीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर धार्मिक तरीके से जीवन व्यतीत किया जाएगा तो ये समस्याएं नहीं आती, शास्त्र हमें ये बताते हैं। अलग अलग समय में हम देखते हैं इस प्रकार की समस्या, राजा के पास लोग चले आते थे, ऐसी समस्या हो रही, बारिश नहीं हो रही, राजा के पास चले गए, हमारा राजा अच्छा नहीं है। आज के समय में लोग जाते हैं राजा के पास, राजा कहते क्या मतलब, भगवान ही बारिश नहीं कर रहे, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, लोग भगवान में टाल देते हैं। पर इन सारी चीजों की जिम्मेदारी राजा का, क्योंकि वो यज्ञ इत्यादि प्रॉपर तरीके से नहीं करवा रहे थे। पर महाराज उग्रसेन सही तरीके से सारे धर्म का पालन कर रहे थे, परंतु तब भी इस ब्राह्मण का पुत्र ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद वो ब्राह्मण वहां से चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। अगला पुत्र हुआ, उसने भी शरीर छोड़ दिया, फिर ब्राह्मण आया उल्टा सीधा बोला चला गया। तीसरा पुत्र हुआ, उसने भी शरीर छोड़ा, चौथे ने भी शरीर छोड़ा, पांचवें ने, छठवें, सातवें, सातवें ने, सभी ने शरीर छोड़ते चले जा रहे थे। ब्राह्मण हर बार आता था, बहुत कुछ बोल के जाता था। ब्राह्मण और क्या करे, हिंसा तो करेगा नहीं, पर बोल के आता ऐसे राजा होने का क्या फायदा। कृष्ण भी उस असेंबली में होते थे, उस सभा में होते थे और कुछ नहीं करते थे। ऐसे करते करते आठ पुत्र शरीर छोड़ दिए, और जब नौवें पुत्र ने शरीर छोड़ा तब वहां पे द्वारका में मिलने कृष्ण के खास सखा अर्जुन भी आए हुए थे वहां पे। और जब अर्जुन के सामने शरीर छोड़ा इस ब्राह्मण पुत्र ने, अर्जुन ब्राह्मण के पुत्र ने शरीर छोड़ा और वो ब्राह्मण आया वहां पे और बोलने लग गया, अर्जुन क्षत्रिय है और उनसे सहन नहीं हुआ, बोला बाकी सब तो चुप थे, कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोले, पर अर्जुन से सहन नहीं हुआ। वो बोले कि महाभारत का युद्ध हमने जीता है, तो अर्जुन का सहन नहीं हुआ, बोले कैसे तुम ऐसे बोल रहे हो कि यहां पे सब कायर है, ये है वो है, सबने चूड़िया आने लगे, ऐसा कुछ नहीं, हम आ रहे हैं, चलो अगला तुम संतान उत्पत्ति करो, मैं देखता हूं कैसे तुम्हारा किसी पुत्र की, तुम्हारे पुत्र की कोई हानि होगी, आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा पुत्र जीवित रहे, सही रहे, मेरे जीते रहते रहते यहां पे कोई भी अन्याय आ सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम ट्राई करोगे कर लो आओ। तो जैसे ही अगला पुत्र होने वाला था अर्जुन को सूचना मिली, अर्जुन जगह पर पहुंच गए जहां पर ब्राह्मण की पत्नी थी, वो पुत्र को जन्म देने वाली है। और अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों से, दिव्य बाणों से बहुत सुंदर बहुत ही स्ट्रांग एक कवच, एक पूरा एक शील्ड का निर्माण कर दिया, इसमें कोई भी अंदर नहीं जा सकता, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ब्राह्मण के पुत्र का जन्म हुआ और उसने शरीर छोड़ दिया। अर्जुन इस कवच इस बाणों के अंदर से यमदूत तो नहीं जा सकते, तो भी कैसा हो गया। वो ब्राह्मण आए बोलने लगे अर्जुन एक खाली अपना गांडी वैसे शो के लिए पकड़ रखा है दिखाने के लिए, छोड़ा उसको खाली तुम्हारी बातें बोलने के लिए है, बड़ी बड़ी डेंगे हाँक लिए अभी कुछ करो प्रैक्टिकल। तो अर्जुन ने कहा अर्जुन से सहन नहीं हुआ, बोला अच्छा रुको रुको मैं अभी आता हूं। अर्जुन थोड़े हल्के जरूर पड़े और तुरंत गए, जब लोग पहुंच गए वहां पे देखा है कौन लेके आया ब्राह्मण को, मैंने वहां पे बाढ़ लगाए थे देखा नहीं आपने रेड लाइट का सिग्नल, तो वहां पे देखा ढूंढा भैया यहां पे ब्राह्मण का कोई पुत्र नहीं, सबने हाथ खड़ा किया अर्जुन के सामने, सब डरते थे। अर्जुन एक बार देवराज इंद्र के पास में रह के आए थे, वहां पे इंद्र को भी हेल्प किया तो सभी जानते थे अर्जुन की शक्ति, तो सभी ने हाथ खड़ा किया बोले यहां पे कोई पुत्र नहीं, बोले यमलोक में भी नहीं अर्जुन और भी अन्य जगह चक्कर का है ये इधर उधर इस ब्रह्मांड में जहां कहां सर्च कर सकते थे ढूंढ सकते थे अर्जुन ने ढूंढ लिया अपनी बुद्धि से और ब्राह्मण पुत्र नहीं मिले। तो अब क्या था, अब बोले वही जो जयद्रथ के समय में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी करने जा रहे थे वो अभी फिर करना पड़ रहा था उनको, उन्होंने चिता बना के उसमें एंटर करने का प्रयास किया और कृष्ण आए बोले ठीक है अब हो गया ना तुम्हारे काम में मैं एंटर लेता हूं, बोले बैठो मेरे साथ। तो कृष्ण के दिव्य रथ पे बैठे और फिर उन्होंने ट्रैवल करना यात्रा करना प्रारंभ की और ब्रह्मांड में बहुत तेजी से यात्रा की, इस ब्रह्मांड को पार करते हुए लोकालोक पर्वत जो माउंटेन रेंज है उसको पार करते हुए सीमाएं पार करते हुए आगे जाने लगे, सारे द्वीप इत्यादि पार कर चुके थे और घोर अंधेरे में पहुंच गए। जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है ब्रह्मांड के ये खत्म हो जाता है उस जगह पे कृष्ण ने अपने घोड़े सारे परेशान हो गए, देव घोड़े थे पर फिर भी इतने अंधेरे में परेशान हो गए। कृष्ण ने आगे सुदर्शन छोड़ा, सुदर्शन हेडलाइट का काम कर रहा था और घोड़े आगे बढ़ रहे थे। इस ब्रह्मांड को भेदते हुए ब्रह्म ज्योति क्रॉस करते हुए वो कहां पहुंचे, महाविष्णु के धाम में, महाविष्णु का धाम वैकुंठ धाम ही है कह सकते हैं लगभग। तो वहां पे पहुंचे और वहां पे महाविष्णु थे जो श्री कृष्ण और अर्जुन का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन वहां पे उतरे और महाविष्णु जानते थे, कृष्ण जानते थे ये क्या है चक्कर और महाविष्णु ने तो समझ, वो जानते हैं कृष्ण सब कुछ जानते हैं। महाविष्णु ने बोला वो ब्राह्मण पुत्र मैंने ही लिए थे, दसवां ही नहीं पहले नौ भी मैंने ही लिए थे और ये सारे मैंने इस वजह से लिए थे क्योंकि मैं श्री कृष्ण आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं, आपकी सुंदरता आपकी अन्य लीलाओं को मैं एक बार मैं चाह रहा था आप मेरे धाम आ सके, मैं आपका दर्शन प्राप्त करूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं, ये अवसर एक बार मुझे मिल सके इस वजह से मैंने यह कार्य किया। अर्जुन बिल्कुल स्तब्ध थे। महाविष्णु ने कृष्ण का वर्षिप किया, पूजा अर्चना की और सब कुछ करके वहां से अलविदा किया उनको वापस आए। हम यहां पे देख रहे हैं कैसे स्वयं महाविष्णु श्री कृष्ण की मधुरता का पान करने के लिए लालायित रहते हैं, कैसे स्वयं श्री महाविष्णु श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, राधिका रमण की सेवा करने के लिए महाविष्णु भी उत्सुक रहते हैं। इसी वजह से भागवत में बोला गया है एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमारे आचार्य ने और भी आगे बोला है एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, आर सब भृत्य में सिर्फ देवतागण और जीव आत्माएं नहीं आते, आर सब भृत्य में हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान के अन्य अवतार भी आते हैं, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, स्वयं बलराम जी भी भृत्य के रूप में आते हैं, तो महाविष्णु तो है ही भृत्य भगवान श्री कृष्ण के। और वही महाविष्णु गौर लीला में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य वही व्यक्ति हैं जिनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, जो स्वयं कारण सागर में लेटे हुए हैं उनसे असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जब वो सांस लेते हैं फुड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, जब विड्रॉ करते सारे ब्रह्मांड खत्म होते हैं, एक सांस में ब्रह्मा जी की पूरी आयु निकल जाती है। ये अद्वैत आचार्य की पोजीशन है। साधारण रूप साधारण से लीला कर वो कृष्ण की लीला में आते, गौरांग महाप्रभु की लीला में आते हैं, परंतु हम उनकी पोजीशन को अच्छे से समझ सकें इसी वजह से कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में पूरा एक अध्याय निर्धारित किया जिसमें वो श्री अद्वैत आचार्य की पूरी पोजीशन को उनके तत्व को अच्छे से समझा रहे हैं। इसी वजह से हमने लगभग अद्वैत आचार्य के डिस्कशन में आधा समय इसी पर रखा कि हम समझ सके अद्वैत आचार्य है कौन और कैसे वो श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्सुक है, और इसी वजह से वो द्वारका महाप्रभु के लीला में आए। तो अद्वैत आचार्य बंगाल में एक जगह है श्रीहाट, श्रीहाट में एक जगह है नामग्राम, यहां पे प्रकट हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के कुछ वर्ष पूर्व, कई वर्ष पूर्व वो प्रकट हुए, वो उम्र में उनसे व्यस्त थे, बड़े थे, और इनकी माता का नाम था नाभा देवी और इनके पिता का नाम था श्री कुबेर पंडित। बहुत ही उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और बचपन से ही इनके दिव्य रूप सभी को आकर्षित करता था और भगवान की भक्ति में ये स्वयं काफी रुचि लेते थे। इनका नाम एक बड़ा कमलाक्ष, कमलाक्ष का अर्थ है जिसकी आंखें कमल के समान है, बहुत सुंदर आंखें थी इनकी। और थोड़े समय बाद ये उस नाभा ग्राम से निकले और दूसरी जगह शिफ्ट किए, मतलब रिलोकेट किए जैसे आज के समय करते हैं। और जब ये शांतिपुर में रह रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व, प्राकट्य के पूर्व, तो वहां पे एक और बहुत बड़े संत महात्मा रहने के लिए आए। ये संत का जन्म हिंदू परिवार में नहीं हुआ था, मुस्लिम परिवार में हुआ था। कौन है ये? हरिदास ठाकुर। साधारण रूप से उस समय कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था और मुस्लिम के जन्म लेने वाले को छोड़ो, मुस्लिम के जो कार्य कर लेता था, जो पानी पी लेता था मुस्लिम का, उसको या पानी छिड़क बूंद पड़ जाती थी मुस्लिम के हाथ से, उसको लोग स्वीकार नहीं करते थे। तो हरिदास ठाकुर को, हालांकि हरिदास ठाकुर भगवान नाम के इतना प्रचार करते थे तो कई लोग उनको एक संत महात्मा के रूप में देखने लगे थे, पर तब भी कई लोग थे जो उस चीज पे उंगली उठाते थे, कैसे हरिदास को कोई एक संत के रूप में देख रहे हो, ये संत नहीं है, मुसलमान है, यमन है, मिलेच है। परंतु जब श्री अद्वैत आचार्य ने अपने पिता की श्राद्ध सेरेमनी, श्राद्ध उत्सव मनाया, तो श्राद्ध के बाद में जैसे प्रथा है लोग कई ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको भोजन देते हैं, सेवा करते हैं, तो श्री अद्वैत आचार्य ने ब्राह्मणों को सेवा करने से पूर्व या उसकी जगह पे क्या डिसाइड किया, उन्होंने इनवाइट किया हरिदास ठाकुर को, उनको आमंत्रित किया, उनको बैठाया, उनको प्रसाद सर्व किया। हरिदास ठाकुर ने बोला, ऐसा क्यों कर रहे हैं अद्वैत आचार्य, प्रथा तो यह है कि एक ब्राह्मण को आपको सेवा करना चाहिए, आप वो जैसे यवन को क्यों सेवा कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य ने सही सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए बोला कि एक वैष्णव की सेवा करना हजारों हजारों ब्राह्मणों की सेवा करने से भी ऊपर है। और फिर अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के अपना भोजन इत्यादि उनको प्रसाद सर्व किया। अद्वैत आचार्य के घर के, अभी भी आप शांतिपुर में जाएंगे तो जहां पे अद्वैत आचार्य का घर है वहीं पे हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर भी है और हरिदास ठाकुर वहां पे रहते। दोनों के बीच में बहुत ही परस्पर गहरा प्रेम में संबंध था और इस प्रकार से वो भक्तिमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऑल्दो वो स्वयं भक्ति कर रहे थे और हरिदास ठाकुर भी नाम का प्रचार कर रहे थे, पर देखते थे कि साधारण जनता किस प्रकार से पाप कार्य में लगी हुई है, किस प्रकार से इतनी तृप्ति के अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो ये वैदिक धर्म, वैदिक साहित्य है, इनका मुख्य लक्ष्य है भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करना। सर्वे पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षते, भागवत भी बोलता, धर्म स्वनिष्ठता पुंसान विश्वक्सेनु कथा सोया न उत्पादयेत यदि रतिम शम एव हि केवलम। अगर अपने अपने धर्म वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करते हुए अगर भगवान की कथा, भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं कर पाता है व्यक्ति, तो ये पूर्ण रूप से सिर्फ श्रम है, शम एव हि केवलम। और उस समय देखा ज्यादातर लोग, एक प्रकार से वैदिक समय था, लोग वैदिक काल था, लोग वैदिक धर्म का पालन कर रहे थे पर कर्म कांड नहीं फंस गए थे। धर्म का पालन इस वजह से कर रहे थे कि उनका अर्थ और काम की तृप्ति हो सके, अपनी इंद्रियों का पोषण कर सके, अपने घर में वो सुंदर बड़ा घर बना सके, सुंदर पत्नी पा सके, उच्च कुल में जन्म पा सके या स्वर्ग में जन्म पा सके, ज्यादा ज्यादा इसके लिए कर रहे थे। और कई जगह पे तो उससे भी नीचे आ गए थे। महाराचार्य ये भी बताते हैं कि उस समय ऐसा समय आ गया था, लोग अपने कुत्ते बिल्लियों का भी विवाह सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते थे। आज के समय में हो रहा है, उस समय भी ऐसा हो रहा था कुछ जगह। तो ये देख के वैष्णवों को बिल्कुल ये चीज भाता नहीं था। आज भी हम जाते हैं, आज हम रोहिणी रथ यात्रा निकालेंगे, रोहिणी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालेंगे, तो जगन्नाथ जी को देख के जा रहे होंगे, तो हो सकता है रास्ते में लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, डबल कोट्स वैलेंटाइंस डे। तो भक्त को देख अच्छा नहीं लगेगा स्वाभाविक, तो क्या वही पक्षियों को फॉलो कर रहे हैं और पशुओं को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से अद्वैताचार्य और वैष्णव को भी अच्छा नहीं लग रहा था और क्रोध आता था, कैसे ये मनुष्य जीवन पाकर लोग इस प्रकार के नीचे कार्य में लग चुके हैं। तो देख के जब ये अद्वैताचार्य को क्रोध आता, कभी कभी तो उनका मन करता था कि अद्वैताचार्य कौन है, महाविष्णु, उनका मन करता निकाले अपने बंधु को, उनका मतलब क्या है, सुदर्शन, एक बार सुदर्शन निकाले सभी को साफ कर दे। तो उनका मन ऐसा करता है क्योंकि देख रहे थे किस प्रकार से मनुष्य जीवन पाते हुए भी लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक चांस उनको मिलना चाहिए, और इनसे इतने पापी हो गए, इस प्रकार से निकृष्ट कार्यों में लग गए हैं, इनको अगर कोई डिलीवर कर सकता है तो इनको हाइएस्ट प्रेम, हाइएस्ट बेनेडिक्शन, कृष्ण प्रेम का जो वरदान है वो मिलके, वो जब स्वयं श्री कृष्ण आके देंगे श्रीमती राधा रानी के भाव में, वो आके देंगे तभी इनका कुछ भला हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर इससे कुछ नहीं, अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मैं अपना लास्ट आखिरी गोली जो सुदर्शन चक्र निकाल के चला देंगे, लास्ट ऑप्शन लेफ्ट। इनको इतना इस प्रकार से जीते रहे तो इंद्र तृप्ति में लगेंगे और पाप करेंगे, उससे बेटर मैं साफ कर देता हूं, अगले जन्म पाएंगे जो भी इंद्र के सेंट ग्रेटिफिकेशन पाप करे तो रुकेंगे। तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण का वाहन किया, शालिग्राम शिला की वर्षिप की, आज भी वो जगह जा सकते हैं, शांतिपुर में अगर आप रिक्शा लें तो एक वहीं पे अद्वैताचार्य के घर से थोड़ी सी दूर पे जाके वो जगह पड़ती है, उस जगह का नाम बबला। तो वहां पे श्री अद्वैताचार्य रुके, शालिग्राम शिला का उन्होंने पूजा अर्चना शुरू की, गंगा जल से सिर्फ उसकी पूजा करते थे, तुलसी दल अर्पित करते थे और श्री कृष्ण का आह्वान करते थे, जोर जोर से श्री कृष्ण को पुकारते थे कि वो प्रकट हो। और इस प्रकार से द्वैताचार्य की प्रार्थना से, उनके करुणामय पुकार से कि लोगों के भले के लिए, साधारणों के भले के लिए, जन कल्याण के लिए, कि उनको इस जो कि इस कलयुग में सबसे पापी नीच आत्माएं हैं, जो सबसे निकृष्ट कार्य में लगे हुए हैं, उनको सबसे उच्च वरदान मिल सके, इस कार्य के लिए, इस हेतु के लिए उन्होंने जब प्रार्थना की, पुकार की, तो स्वयं श्री कृष्ण बन गए और श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। ये क्रेडिट है द्वैताचार्य को। तभी नरोत्तम दास ठाकुर ने जो सॉन्ग लिखा उसमें गाया, जो गीत लिखा उसमें लिखा, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य बिताई, आपकी कृपा से, आपकी कृपा के बल पे मुझे कौन मिल सके, चैतन्य बिताई, उन्हीं की कृपा के वश पे, उन्हीं की कृपा की वजह से ही हमें चैतन्य महाप्रभु के अनंत प्रभु का संग मिल पाया और आगे भी कृपा मिल पाएगी उनके बारे में सुन सकता है। अनेक लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य की, और सीमित बुद्धि से, सीमित साक्षात्कार से, सीमित समय में कर पाना बड़ा मुश्किल है उनके बारे में सारी चीजें डिस्कस कर पाना, पर कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे अद्वैताचार्य का जन्म हुआ और उनकी दीक्षा भी, उन्होंने दीक्षा ली श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी, आपने माधवेन्द्रपुरी की कथा सुनी होगी, कैसे उनको गोपाल जी ने, जो कि अभी श्रीनाथ जी के नाम से प्रख्यात है, उन्होंने गोवर्धन पे बोला जाओ जगन्नाथपुरी, वहां से चंदन लेके आओ, मैं चंदन लगाऊं, मुझे गर्मी लग रही है, पहले बहुत स्नान कर चुके थे, पर बोले अभी मैं चंदन चाहिए। तो जब माधवेन्द्रपुरी वृंदावन व्रत से निकले पुरी की तरफ और रास्ते में वो बंगाल पड़ता था, बंगाल से जा रहे थे, तब वो रुके शांतिपुर में अद्वैताचार्य के यहां, उनकी सेवा स्वीकार की और सेवा ही नहीं स्वीकार की, उनको अपने शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया। माधवेन्द्रपुरी के एक और शिष्य हुए ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम देखें अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, और स्वाभाविक रूप से जब गुरु के गुरु भाई हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको आदर सत्कार प्रेम पूरे जैसे वैष्णव समाज में होता है उस प्रकार से देते थे। अद्वैत आचार्य को यह बिल्कुल नहीं भाता था, बोले कोई और दे तो ठीक है, बाकी सब भूल रहे हैं, सब ठीक है पर ये क्या, ये स्वयं इनको मैंने बुलाया कि धर्म का कल्याण कर, मैं कर नहीं पा रहा था उस कार्य के लिए, इनको बुलाया और ये उल्टा मेरे पीछे मुझे आदर देने में पड़े हुए और उनको बिल्कुल अनकंफर्टेबल, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था। तो क्या करें, तो एक दिन उन्होंने युक्ति सूझी, उन्होंने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक से प्रेम करते हैं, हर एक से कृपा करते हैं, पर एक चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं, वो है अगर कोई मायावाद का प्रचार करे। बोले एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण का शरीर ब्रह्म है, वो शरीर के बियॉन्ड वो ब्रह्म है, इस प्रकार से जो चर्चा करते हैं, सब कुछ एक ज्योति है, उसी ज्योति से सब कुछ निकले, कृष्ण राम सब कुछ उसी से निकले, ये एक मायावाद भाषा है। जो लोग इसका प्रचार करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो उन्होंने सोचा अगर मेरे को कहीं से ये आदर सत्कार रुकवाना है तो यही एक तरीका है। तो तुरंत पहुंच गए, उसका प्रचार करने लग गए आसपास में, और जैसे ही ये प्रचार करने लगे तो लोगों ने कहा ये अद्वैत आचार्य अभी तक तो ठीक थे ये उनको कहां से सुखी, तो सभी सब भागे भागे कहां आए गौरांग महाप्रभु के पास। गौरांग महाप्रभु से बोले आपने सुना अद्वैत आचार्य ही बोले है, क्या बोल रहे, तभी दूसरा अद्वैत आचार्य नहीं कोई और बोल रहा, बोले दूसरा है, बोले नहीं नहीं अद्वैत आचार्य ही बोल रहे, हमने भी देखा। बोला अच्छा, और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो क्या वो उनके हाथ हिलने लग गए, लिप्स कांपने लग गए, आंखें लाल हो गई, बोले नाड़ा नाड़ा करके उनको बुलाते, बूढ़े को अभी मैं सिखाता हूं बूढ़े को। वो गए अद्वैत आचार्य के पास में, बोले बहुत दिन से तुम्हें मैं समझता था तुम अच्छे व्यक्ति हो और मैं तो लगा तुम भगवान के चरण में भक्ति तुम्हारी, मैं इसलिए आदर सत्कार दे रहा था, वो पकड़ा और दे देना था उनको देना लगाना शुरू कर दिया अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य पहले बैठे तो जब गए थे तो अद्वैत आचार्य अपना प्रवचन कर रहे थे वही मायावाद, और जैसे ही देखा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऋषि चैतन्य महाप्रभु आ रहे और जोर से प्रचार कर रहे, ये कृष्ण का शरीर माया है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म है, बोले तुम्हारा ब्रह्म खत्म कर दो, ब्रह्म खत्म कर दो। और जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया तब अद्वैत आचार्य बहुत खुश हुआ, आ हा बोला अब जाके मुझे कृपा प्राप्त हुई, असली कृपा अभी तक जो मिल रहा था वो कपटी कृपा थी, जो कुछ भी अभी तक मेरे को आदर सत्कार जो भी आप दे रहे थे वो सिर्फ कपटी कृपा थी, अब जाके आपने मुझे अपने सर्वेंट के रूप में रखा। और महाप्रभु तो पहले वेग में थे, वो लगा रहे थे अद्वैताचार्य आनंद, जब उन्होंने देखा रहे अद्वैताचार्य इस वजह से करते, महाप्रभु को लग जाए, उनको पता चल गया कि अद्वैताचार्य ने क्यों ऐसा किया था। तो देखते हैं कैसे अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु होते हुए भी श्री कृष्ण के सेवक के रूप में, महाप्रभु के सेवक के रूप में अपने आप को देखते थे। और एक और इससे हम सीख लेते हैं कैसे वरिष्ठ वैष्णव जब तक हमें प्रेम से करते हुए, प्रेम पूर्वक हमें हाथ सर पे हाथ फेरते हुए कर रहे हैं ठीक है, पर वो असली कृपा नहीं है। अद्वैत आचार्य देखा जब उनका करेक्शन, उनके चेस्टाइजमेंट कैसे हमें अपना समझ के हमें सुधारने का प्रयास करते हैं, उसमें शायद कुछ कड़े शब्द भी बोले, कड़वे शब्द उसी को पिता बेटा बेटे को कौन बोलेगा, बाप ही बोलेगा, पड़ोसी आके नहीं बोलेगा उसको तुम सिगरेट पी रहे हो या गलत काम है, पड़ोसी बोले पीने दे, पर पिताजी को पड़ेगा, जो अपना समझता है वही बोलेगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कड़वे शब्द बोले अद्वैत आचार्य ने बोला ये असली कृपा है, यही असली कृपा है। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के बहुत क्लोज थे और कई बार शांतिपुर भी आए, बहुत एक बहुत फेमस पास्टर, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो जा रहे थे वृंदावन की तरफ, नित्यानंद प्रभु ने उनको थोड़ा सा मिसडायरेक्ट कर दिया, साइन बोर्ड चेंज हो गए हुए, उनको डायरेक्ट कर दिया शांतिपुर की तरफ। कुछ बच्चे खड़े हो गए चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए आ रहे थे, उन्होंने पूछा कहा वृंदावन, नित्यानंद प्रभु ने पहले बता रखा था इस तरफ बोलना इस साइड, और बोला इस साइड गंगा की तरफ डायरेक्ट करते हुए, और चैतन्य महाप्रभु डांस करते हुए पहुंचे, गंगा को देखा उनको लगा यमुना, और यमुना में कूद गए, यमुना यमुना कृष्ण का स्मरण होने लगे यमुना, तभी वहां पे देखा बोट में चलाते हुए कौन आए अद्वैत आचार्य। तो बोले हे अद्वैत आचार्य आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं? अद्वैत आचार्य बोले प्रभु जहां पे भी आप हैं वही वृंदावन है। उनको बोट में बैठाए, बोले घुमा के उत्तर बोल रहा है सही नहीं। जब पहुंचे तो देखा वहां पे शांतिपुर था, पूरी महफिल जमी थे, नित्यानंद प्रभु भी थे, वो समझ गए सब इसी की ट्रिक है खैर वहां पे बहुत बड़ा फेस्टिवल हो, सारे वैष्णव आए, उन्होंने क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद में नवद्वीपवासी गहरे पे बहुत ही गहरे सदमे में थे। जैसे उनको पता चला शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु, सभी भागे भागे पहुंचे, उनके दर्शन इत्यादि किए, शची माता भी आए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहे और फिर जब फिर से वृंदावन जा रहे थे पुरी से, तो पुरी से वृंदावन जाते रास्ते में पड़ता है बंगाल, तो फिर से वो शांतिपुर में आए। और फिर जब शांतिपुर में आए तो अद्वैताचार्य के रुके, तो मायापुर नहीं जाते थे। मायापुर क्यों नहीं जाते थे कि संन्यास ले चुका है, सन्यासी को वापस अपने घर नहीं जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस वजह से मायापुर नहीं जाते थे, पर अपने भक्तों को संग देने के लिए वो यहां पे आए शांतिपुर में। और शांतिपुर में जब वो थे तो बहुत बड़ा एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया, जैसे चैतन्य चैतन्यमृत में आप पढ़ सकते हैं, यह फेस्टिवल था श्री माधवेन्द्रपुरी का तिरुभाव दिवस, क्योंकि अद्वैताचार्य के गुरु थे, उसी समय पहुंचे श्री चैतन्य महाप्रभु। और बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य ने मिलकर सेलिब्रेट किया था। और आज भी इस फेस्टिवल शांतिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये फेस्टिवल के सेलिब्रेट करने का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ को मिली हुई है। शांतिपुर इतनी स्पेशल जगह है, जब मायापुर में हमें लैंड मिलने के लिए स्कॉन को बहुत समस्या हो रही थी, मिल ही नहीं रहा था, बहुत समस्या हो रही थी, तो श्री जयपति गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि श्री प्रभुपाद ने कहा कि अगर हमें मायापुर में लैंड नहीं मिल पाता है जहां पे हम इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बनाना चाहते हैं, तो हम अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर शांतिपुर में बनाएंगे अद्वैताचार्य की जगह पर। तब कृपा बले पाई चैतन्य नहीं पाई। श्री प्रभुपाद के एक शिष्य का नाम है सिद्धांत प्रभु, ये मायापुर में थे सेवा कर, से मायापुर मंदिर बन चुका था, वहां पर सेवा इत्यादि कर रहे थे। मैं भारतीय ओरिजिन के है, तो वहां पे देखा एक दिन एक जब वो पुजारी कक्ष में सेवा कर रहे थे तो देखा एक वैष्णव, गौड़िया वैष्णव, इस्कॉन से नहीं थे, बाहर से थे, बंगाली लग रहे थे, तो वो वहां पे ढूंढ रहे थे कुछ, एक्चुअली ढूंढ क्या रहे थे, किसी से बात करना चाह रहे थे, किसी से कुछ बोलना चाह रहे थे। तो वो गए उनके पास, बोले क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं, बोले मैं क्या थोड़ी देर आपसे समय ले सकता हूं, बात कर सकता हूं, तो बोला हाँ बिल्कुल। सिद्धांत प्रभु बैठे, बोले अच्छा गुड्स, कोई वरिष्ठ गौड़ीय वैष्णव है, उनका संग मिलने का अवसर मिल रहा है, तो बैठे। तो बताने लग गए, मैं शांतिपुर से हूं, मैं शांतिपुर में मैं पुजारी हूं, अद्वैताचार्य जी के जो मदन गोपाल जी के विग्रह हैं, मैं उनकी सेवा अर्चना कर रहा हूं, कई वर्षों से कर रहा हूं, बहुत सारे वर्षों से, कई वर्षों से, वृद्ध थे। और जब मैं उनकी सेवा अर्चना करता था कई वर्षों पूर्व, तो मैं देखता था एक गृहस्थ वैष्णव नियमित रूप से आते थे, काफी जल्दी जल्दी वहां पे आते थे, और कुछ नहीं करते थे, मंदिर कक्ष में बिल्कुल बैठ जाते थे, बिल्कुल पीछे जाके, और सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का इस प्रकार से जप करते रहते, आंखें बंद होती थी, जप में उनका मन लगा रहता, हाथ में जपमाला होती थी और आंखों से अश्रु की धारा प्रवाह होते, बिल्कुल आंखों से अश्रु बहते रहते थे, चुपचाप जप करते और चले आते, फिर आते कुछ दिनों बाद फिर जप करते, फिर चले जाते, फिर जप करते रोते और चले जाते, रोते मतलब जबरदस्ती रोना नहीं, स्वयं उनके आंखों से आंसू बहते थे, अपने आप को दीनहीन करुणा की याचना करते वो इस प्रकार से जप करते थे। फिर कई वर्ष तक वो नहीं आए शांतिपुर, मैं सोच रहा था वो व्यक्ति आते थे अभी नहीं आए, क्या हुआ, खैर चले गए। कई वर्ष बाद मैंने देखा एक व्यक्ति गेरुए रंग के संन्यास वस्त्र में वहां पर आया, उसी जगह पे पीछे बैठ गया और जप करने लग गया, उसी इंटेंसिटी के साथ वो जप कर रहा था, पर उसके आंखों से अश्रु और तेजी से बह रहे थे, बहुत तेजी से अश्रु बह रहे थे, और वो रोए जा रहा था, कृष्ण का नाम लिए जा रहा था। मैंने ध्यान पूर्वक देखा, ये तो वही मेरा पुराना मित्र था जो कई वर्षों पूर्व आता था, लगातार आते थे, वो आज फिर आए, आज ये संन्यास वेश में यहां पर। फिर जप करने के बाद वो वहां पे उठे, मुड़ के बाहर निकले और जाने लगे, तभी जो पुजारी थे उनके पास गए, बोले प्रभु क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, आप कौन हैं? तो जो सन्यासी थे वो मुड़े, बोले मेरा नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी है। मैं अपने गुरु महाराज का एक पतित, एक नीच शिष्य हूं, और मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कई वर्ष पूर्व कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पाश्चात्य देशों में प्रचार प्रसार किया जाए। इतने वर्षों से मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कई बार प्रयास करने किया पर असफल रहा, हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कुछ खास कर सको, जो भी प्रयास था कुछ खास उसमें हुआ नहीं। अभी भी मेरी इच्छा है, इस जीवन के इस समय में पहुंच चुका हूं, वृद्ध हो गया हूं, शरीर साथ नहीं दे रहा, पर तब भी मेरी इच्छा है कि मैं एक आखिरी प्रयास करूं, एक प्रयास करूं जिससे मैं अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकूं, इस उनका संदेश पाश्चात्य जगत में पहुंचा सकूं। और कल मैं जहाज से अमेरिका जा रहा हूं, और जाने के पूर्व मैं इस स्थान पे आया, कृपा की याचना करने के लिए कि यहां पे स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, स्वयं नित्यानंद प्रभु, स्वयं अद्वैत आचार्य एक साथ बैठे थे, उनकी कृपा की याचना करने के लिए मैं यहां पे आया। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे शक्ति दे मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं, और आप भी कृपा करें कि मैं अपने गुरु का आज्ञा पालन कर सकूं। ये पुजारी बोले, जो भी मैं मेरे पास जो कृपा है मैं आपको दे देता हूं, और मैं निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप सफल हो। वो सन्यासी वहां से चले गए, पुजारी बता रहा था। कई वर्ष हो गए, मैं सोचता रहता क्या हुआ सन्यासी का, गए थे अमेरिका विदेश, कहीं शरीर तो नहीं छोड़ दिया, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ पता नहीं चला। कुछ वर्ष निकल गए, कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने कुछ अजीब गरीब चीज देखने लग गया, यहां पर देखने लग, कई सफेद वैष्णव आने लग गए, कंठी माला तिलक डाले गोरे वैष्णव यहां पर आते थे। मैं हिचकिचाता था उनसे, क्या बोलो, मेरे को अंग्रेजी आती नहीं थी, क्या बोलो, मैं थोड़ा अटपटा सा इधर उधर देखता रहता। कई ऐसे वैष्णव आके चले गए। एक दिन एक वैष्णव था, उसके पास मैं थोड़ा सा गया, बात करने का प्रयास किया तो बात तो कुछ नहीं हुई। उसके पास एक मैगजीन थी, पत्रिका थी, उसने वो पत्रिका मुझे दिखाई। उस पत्रिका में उनके गुरु का एक छोटा सा लेख था गुरु के ऊपर में, उसकी फोटो थी। मैंने इस फोटो को ध्यान से देखा, मेरा वही पुराना मित्र का फोटो था, पत्रिका का नाम था बैक टू गॉडहेड। मेरे उस मित्र ने श्री अद्वैत आचार्य की कृपा प्राप्त करके, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करके पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत की स्थापना की। मैं बस यहां पे आपसे यही शेयर करने आया था। श्री अद्वैत आचार्य आयुर्भाव तिथि महा महोत्सव की जय, शिल प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।